ओम शांति। हम सबके सिर के ऊपर वरदानी हाथ निरंतर अनुभव हम सब करते रहते हैं। चार दिन की ये जो साधना भट्ठी, सभी ने इसका पूरा लाभ लिया और आज भट्ठी पूरी होगी। भट्ठी पूरी नहीं हुई, भट्ठी तो शुरू होगी कल से जब आप जाएंगे। असली भट्ठी तो कर्म क्षेत्र पर होती है। जब हम कर्म से निवृत्त होकर साधना करते हैं, स्वयं को तपाने का पुरुषार्थ करते हैं, स्वयं की कर्मेंद्रियों को शीतल करने का प्रयास करते हैं, मनन चिंतन को प्रखर करने की कोशिश करते हैं, स्वयं की खोज की मेहनत करते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पहले का जीवन है, जो भट्ठी से पहले का जीवन, वो बहुत मायने रखता है। अगर हम वो सब बिना प्रयास के सीधा भट्ठी में आके बैठते हैं तो उसका उतना महत्व नहीं ले पाते हैं। लेकिन फिर भी जब हम विशेष समय देते हैं अपने लिए, अपने अंदर झांकने के लिए, जो बाबा ने हमें सबको ज्ञान का दर्पण दिया है, ज्ञान का आईना दिया है कि स्वयं को देखो, जो सूक्ष्म विकृतियां हैं, सूक्ष्म कमजोरियां हैं, जो सूक्ष्म विकार हैं हमारे अंदर, उनसे हमारा सामना होता है। साधना में ऐसे नहीं है कि हमको कोई दूसरे संकल्प नहीं आएंगे। जो हमने अंदर में खजाना भर के रखा हुआ है वो सारे साधना के समय आते हैं, मौन की अवस्था में। उसी समय सारे संकल्प प्रहार करेंगे, बाहर करेंगे, बाहर निकल कर आएंगे। लेकिन उस समय स्वयं को संयमित रखना, स्टेबल बनाना, स्वयं की मनोबल को एकाग्र करना, वही साधना है। उनसे डरना नहीं, उनसे मुकाबला करना, क्योंकि जो भी हमारे संस्कार हैं उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको समझना है। वो अगर संस्कार आ रहे हैं तो उनका कारण क्या है, नए संस्कारों का हमने स्वयं के अंदर वो समावेश नहीं किया है। जो नए संकल्प हैं, जो नई ऊर्जा है, नए संस्कार हैं, नए बोल हैं, नए कर्म, नए दृष्टि, नई वृत्ति, उसको हमने अपने मन में जमा नहीं किया है या उसका टेस्ट नहीं लिया है। जब एक बार किसी चीज का टेस्ट बैठता है तो अपने आप मन उतर जाता है। जैसे भी कुल्फी खा के आए, अब देखने सुनने से मन चला गया ना उधर, फिर कोई ने सोचा भी अगर दूसरी भी खा लूं, तो अच्छी चीज जो होती है वो अपने आप आकर्षित करती है, और वो जो खाते हैं तो उसमें खुशी होती है ना। तो इस ज्ञान सर्वोत्तम आत्मा के लिए जैसे पोषण का काम करता है, खुराक है ये, तो इस खुराक को कैसे हजम करना है। खा तो हम लेते हैं लेकिन उसको हजम करना वो फिर निर्भर करता है हम कितना मनन चिंतन करते हैं, उस पर कितना गौर करते हैं। क्योंकि जब तक हमने अपने मन को चिंतन करने की दिशा नहीं दी, तब तक हमारा मन पुरानी स्मृतियों में ही विचरण करता रहेगा, पुराने संस्कारों से ही युद्ध करता रहेगा, टकराव, लगाव, झुकाव, ये सब चीजों से युद्ध करता रहेगा। लेकिन जब हमको पता चल जाता है, ज्ञान क्लियर है, स्पष्टीकरण है कि पुराने शूद्र जीवन से हमको कितना दुख मिला, धोखा मिला, कितना नुकसान हुआ है, तो वो जानने के बाद उनको छोड़ना फिर सहज हो जाता है। इसलिए इस ज्ञान को समझना है, अंडरस्टैंड, केवल रटना नहीं है, हर चीज की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमको कर्म क्षेत्र पर रहना है और इसकी जरूरत कर्म क्षेत्र पर ही पड़ती है। जब कोई परिस्थितियां आती हैं, जैसे आज हमको किसी ने एक मैसेज भेजा कि कड़वी दवाई को चबाया नहीं जाता, क्या किया जाता है, निगला जाता है। अगर चबाई तो कड़वी लगेगी ना, तो जीवन में कड़वी बातें आएंगी, अगर उनको बार बार याद करते रहेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे, तो जीवन ही कड़वा हो जाएगा। क्या करना, कड़वी बातों को निगल जाओ, अर्थात समा लेना है। इसलिए बाबा ने हमको सर्वशक्तियों का वरदान दिया हुआ है, लेकिन हम उनका स्मृति स्वरूप बनकर रहते हैं तब वो कार्य करती हैं। पहले है स्मृति, फिर है स्वरूप बनना। पहले तो है पढ़ना, फिर उसको समझना, फिर उसका स्वरूप बनना। तो ये एक दो दिन की साधना नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं जब तक जीना तब तक इस ज्ञान अमृत को पीते रहना है। तो ज्ञान का गहराई से चिंतन चाहिए। हमारे पुरुषार्थ की अगर स्पीड कम होती है, उसके कुछ एक कारण है जिन पर हम देखेंगे कौन कौन से कारण हैं, और स्वयं की खुद ही जांच करनी है, किसी के अलग कारण भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो है हमारा लगाव कहाँ है, इस ज्ञान से लगाव है या फिर कहीं और है। विकारों को बाबा परिवर्तन करते हैं, जैसे बाबा कहते हैं मोह जो है वो शुद्ध मोह में परिवर्तन हो जाए। तो हमारे जो लगाव है, अटैचमेंट है, चाहे वो अपनी देह से भी हो सकती है, दूसरे की देह से भी हो सकती है, संबंधों से भी हो सकती है, अपने जिस स्थान पर हम रहते हैं वहां से हो सकता है अटैचमेंट, किसी व्यक्ति से हो सकता है, किसी वस्तु से हो सकता है, इन सब से परे निकल जाना है, डिटैच। क्योंकि सूक्ष्म रस्सियां मन को बांध के रखती हैं, जो हमको उड़ान भरने नहीं देती हैं। तो देखना है कहां कहां मेरे अटैचमेंट है। अब उनको तोड़ने के लिए अगर हम कहें कि उनको अटैच लगाव हमको रखना नहीं है, तो कहने से नहीं होगा, उसके ऊपर कुछ प्रयोग करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। उस लगाव के, उस अटैचमेंट के नुकसान क्या हैं, फायदे क्या हैं, वो हमको उस पर चिंतन करना पड़ेगा, अन्यथा हम वहीं का वहीं रहेंगे। जैसे नाव तो बैठे हैं लेकिन उसका लंगर खोला ही नहीं है, चलाते रहो चप्पू, सवेरे को फिर वहीं के वहीं। तो ऐसा ना हो कि हम ब्राह्मण जीवन की यात्रा हम सोच रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और लास्ट में देखें हमारी झोली खाली हो। तो जो भी हमको लगाव है, जिससे भी अटैचमेंट है, वहां कुछ ज्ञान के योग के प्रयोग करने हैं। पहले तो समझना है कि उस लगाव से हमको फायदा किया हुआ, निष्कर्ष निकलेगा कोई फायदा नहीं है। और ये सारा ज्ञान संसार में भी है, कहते भी कोई किसी का नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभूति हमको यहां आकर होती है। कोई तो छोड़ दो, देह भी तो अपना नहीं है, ये भी तो धोखा देता है, और इसी से तो डिटैच होना अपने को। तो देखना हमको नुकसान क्या है, इस देह को अगर मैं सारे दिन इस पर चिंतन करते रहता हूं, इसी के बारे में सारा हमारा संकल्प की ऊर्जा उसी में खर्च होती रहती है, तो उससे फायदा क्या, वो सारा बॉडी कॉन्शियसनेस है। इसलिए बाबा कई दफा मुरली में कहते हैं कि बच्चों को फैशन की आदत होती है, उसी में टाइम चला जाता है, और ये टाइम बहुत कीमती है। बाबा कहते टाइम वेस्ट ना करो। आज की मुरली में था, कहां पर था? मुरली के पेज पर था। कौन से पेज पर था? मीठे बच्चे में था। टाइम वेस्ट है जी, हाँ सार में भी और पहले मीठे बच्चे सार में भी था। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं नहीं करना तो हमारा नहीं होता है, बहुत सूक्ष्म है टाइम को पूरा सफल करना। पुरुषार्थ करते करते 5 मिनट अगर हमारे वेस्ट होते हैं तो अंदर से गिल्ट कॉन्शियस पैदा होती है। और कई बार तो 5 मिनट की बजाय अगर हमको पुरानी आदत आकर्षित करती है तो कितना टाइम चला जाता है, ये तो हम अपने आप को खुद ही सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो अटैचमेंट उन साधनों से भी है, व्यक्तियों से अटैचमेंट धीरे धीरे कम हो रही है जब साधनों का प्रभाव बढ़ने से साधनों में अटैचमेंट ज्यादा हो गई है, और वो साधन हमारी साधना को खोखला करते जा रहे हैं। जो साधना शक्तिशाली होनी चाहिए, जिस साधना का बल हमको अनुभव होना चाहिए, और वो बल है हमारे स्वयं की कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण, स्थूल सूक्ष्म। तो स्वयं पर बहुत सूक्ष्म तरीके से नजर रखने की आवश्यकता है। जो भी हम सवेरे शाम दिन में भी योग करते हैं, अगर थोड़ा सा भी, सारा दिन हमने अमृत इकट्ठा कर लिया, अगर थोड़ा सा भी जहर पड़ गया तो एक माई चट। बाबा कहते व्यर्थ संकल्प भी एक विष की तरह है, व्यर्थ संकल्प स्वप्न तक नहीं होना चाहिए, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। पिछले संडे की मुरली में था ना, संकल्प और स्वप्न तक भी। अब बाबा इतनी बड़ी परिभाषा देते हैं, कई दफा लंबे समय से पुरुषार्थ करने के बाद भी हार होती है तो कई बार दिल शिकस्त हो जाते हैं, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना है। उतार चढ़ाव आएंगे, माया आएगी, ऐसा नहीं है कि सारे प्रहार हमारी तरफ से हों। सामने वाला तो कुछ तो करेगा, भले को दुबला पतला भी है, लेकिन हमारे पास संकल्पों का स्टॉक है, शुद्ध संकल्पों का खजाना है, तो फिर वो माया हावी नहीं होगी। आएगी भी तो हम उनको क्रॉस कर लेंगे, बादल आएंगे छंट जाएंगे। तो जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, कई तरह के प्रश्न उत्तर आएंगे, लेकिन मन स्टेबल रहेगा अगर हमने आदत डाली है चिंतन करने की, उसके उससे बचने का मार्ग स्वयं तलाशा है। क्योंकि खुद को ही मार्ग तलाशना पड़ेगा, दूसरे के बताए मार्ग पर हम लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। बाबा भी हमको केवल मार्ग बताते हैं, चलना तो खुद को ही पड़ेगा। फॉलो फादर कहते हैं, लेकिन करना तो खुद को ही फॉलो करना पड़ेगा ना। तो देखना है कहाँ कहाँ हमारी अटैचमेंट है, स्थूल साधनों में, व्यक्तियों में, पदार्थों में, देह में, या फिर अपनी विशेषताओं से अटैचमेंट हो जाती है। ज्ञान में आने के बाद अपने ज्ञान के चिंतन से अटैचमेंट हो जाती है, अपने पुरुषार्थ की स्पीड से अटैचमेंट हो जाती है। पुरुषार्थ अगर बढ़ता है तो अटैचमेंट होती है, फिर उसके कारण दूसरों को हम छोटी नजर से देखना आरंभ कर देते हैं, और स्वयं को हम बहुत हायर कॉन्शियसनेस में समझने लगते हैं। लेकिन कौन आत्मा किस स्टेज पर है, इसको परखने के लिए भगवान ने हमको कोई जिम्मेवारी नहीं दी है। जिस सीट पर हम सेट रहते हैं, ऊंची से ऊंची सीट पर, उसी सीट पर दूसरों को सेट होते देखना है। बाबा हमेशा हमको सोमान देते हैं, तो ऊंचे से ऊंचे सोमान की सीट पर पहले सेट करते हैं। कभी बाबा नहीं कहते तुम नलायक हो, इतने समय से मूलियां पढ़ा रहा हूं फिर भी कुछ नहीं करते हो। बाबा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि बाबा हमारे आदि मध्य अंत को अच्छी तरह से जानते हैं। किन्हीं बच्चों में ताकत है जो सारे संसार की नैयों को पार लगाने की हिम्मत रखते हैं? ये वही आत्माएं हैं जिनके हाथ में सारे संसार की बागडोर होगी। वो संभालने की क्षमता है, वो संभालने की काबिलियत है। तो जैसे बाबा हमको ऊंची नजर से देखते हैं, हमें भी सबको ऊंची नजर से देखना है। और ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान में आए उन्हीं को ही, जो ज्ञान में नहीं है उनको भी, क्योंकि उनका भी तो जो अनादि स्वरूप है वो भी क्या है, संपूर्ण पवित्र है। वो तो केवल विस्मृति की निद्रा में है और हम स्मृति की होश में हैं। फर्क तो केवल इतना ही है, लेकिन हैं तो वो भी संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं। तो जब हम पूरी सृष्टि के प्रति, पूरी कायनात के प्रति हमारी दृष्टि वृत्ति ऊंची रहेगी, तो संसार की कोई भी छोटी मोटी बातें हमको आकर्षित नहीं करेंगी। जैसे बाबा को कोई छोटी मोटी बातें खुद थोड़ी प्रभावित करती हैं, वो बैठा साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होके, तो हमको भी साक्षी होकर इस खेल का मजा लेना है, अनुभव करना है उसको। सबसे पहले स्वयं को साक्षी होकर देखना है कि जिस निगाह से भगवान मुझे देखता है, क्या उसी अनुसार मेरी जीवन शैली है, उसी अनुसार मैं कर्म क्षेत्र पर संबंध संपर्क में आता हूं। जैसे दृष्टि भगवान की है, क्या वैसे ही मेरी दृष्टि है? भगवान की दृष्टि कैसी है? विकारी है? निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी, पावनता का सागर। तो ऐसे ही महसूस करना है, वो पावनता का सागर हमारी आंखों से झलक रहा है। वो पावनता की पूरी शक्ति उसने हमारी आंखों में समा दी है। जिसको भी हम देखें तो हमारे वाइब्रेशन काम करें, वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल। अगर हमारी वृत्ति में वो प्योरिटी के संस्कार होंगे, प्योरिटी के संकल्प होंगे, प्योरिटी के बोल होंगे, तो वाइब्रेशन भी वैसे क्रिएट होंगे। जैसे मन में संकल्पों की हमने रिकॉर्डिंग करके रखी है, उसी अनुसार हमारी वृत्ति और वृत्ति के साथ वायुमंडल, एनवायरमेंट और वैसे वाइब्रेशन होंगे। हमारे सराउंडिंग एरिया में, आसपास में, इर्द गिर्द में वैसे वाइब्रेशन अपने निर्माण होंगे। इसलिए मधुवन में आते हैं तो क्यों यहाँ के वाइब्रेशन आकर्षित करते हैं, क्यों खींचते हैं? क्योंकि यहाँ संकल्पों का प्रवाह है, प्योर संकल्पों का प्रवाह, वो वाइब्रेशन है। तो जहां भी हमारे कदम पड़े उस स्थान को हमको पवित्रता से भरपूर कर देना। ऐसा नहीं कि हम मधुवन में हैं तो हमें हमारा यही योग लग रहा है, जहां भी हम खड़े हो जाएं वहीं हमारा योग लगे। जिस स्थान पर हम हैं वो स्थान ही साधना का स्थान बन जाए। जिस स्थान पर हम कर्म करते हैं वो कर्म क्षेत्र ही दूसरों को सुख देने का स्थान बन जाए। बोलना न पड़े वाइब्रेशन से, व्यवहार से, और इसके लिए लंबे समय से स्वयं को ज्ञान सागर में डुबोना पड़ेगा। उथला उथला हम ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, उससे कुछ नहीं होता है। हाँ, पहला स्टेप तो पढ़ने वाला ही है। कई बार ऐसे भी सोच लेते हैं मुरली पढ़ी याद ही नहीं रहती है। ये सोचना नहीं, याद तो करने के लिए सोचना नहीं कि मुरली याद करनी है। हमारी कॉन्शियस होती है मुरली याद रखनी है, नहीं, पहले केवल पढ़ो उसको, समझने की बाद बात है। चार पेज पढ़े हैं, दो शब्द तो आएंगे मुट्ठी में, तो पहले केवल पढ़ने की आदत डालनी है, याद रहे ना रहे। पढ़ने के संस्कार पक्के हो जाएंगे धीरे धीरे, फिर वो संस्कार हमको फिर समझने के लिए भी मदद करेंगे, अपने आप बुद्धि का ताला खुलेगा। परसों के मुरली का प्रश्न था, बुद्धि का ताला किन बच्चों का खुलता है? जो यहां बैठे हुए हैं। एक तो ये हो गया नंबर, और दूसरा तीन बातें बताई थी। पहला पॉइंट था जो श्रीमत पर चलते हैं, दूसरा अभी तक तो देख भी लिया होगा मोबाइल से पीछे, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ते हैं, हाँ जी याद करते हैं, और वैराग्य की बात भी थी, फिर याद की बात परसों की, तीन चार दिन पहले मुरली में थे, बाप को कैसे याद करना चाहिए प्यार से, और आशिक माशुक वो आज की मुरली में था, वो बाबा कहते ना चादर ओढ़ के याद करना चाहिए, शब्द कोई दूसरे थे, वो बोल गए भी हम। तो ज्ञान रत्नों से खेलना है, ऐसा नहीं सोचना ज्ञान बहुत भारी है याद ही नहीं रहता है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारे निजी संस्कार हैं, वो ऑलरेडी पहले से सारा ज्ञान है। हाँ जी हाँ, वो रोने की बात है, जैसे किसी को रोते रोते रहते ऐसे आप भी ऐसे याद होनी चाहिए, बाप की याद होनी चाहिए, जो जैसे गलियों में भांवरी भरकर मीरा की तरह घूमते रहते हैं। तो याद हमारे संस्कार हैं, ज्ञान हमारा सारे संस्कारों में समाया हुआ है, जो परिवार के माँ बाप के संस्कार होते हैं वही तो बच्चों में होते हैं ना, तो महात्माओं में वो सारे संस्कार हैं ऑलरेडी पहले से, अंदर में जो आवरण है आत्मा के आगे अनेक प्रकार की सूक्ष्म दीवारें हैं, चाहे वो व्यर्थ संकल्पों की हैं, लगाव की हैं, टकराव की हैं, झुकाव की हैं, उनको हटाना है, और वो हटाएंगे जब हम अपनी स्वयं की खोज करेंगे एकांत में बैठ के या चलते फिरते, और टाइम तो सबके पास होता है, ये तो कह नहीं सकते एकांत के लिए टाइम नहीं मिलता, सबको मिलता है, घर से सेंटर तक जाते हैं बहुत टाइम होता है सबके पास, और वो एकांत का ही टाइम होता है। जैसे कई बार कई दफा हम जाते हैं वाकिंग में तो अकेले जाते हैं, तो यही संकल्प करते हैं आखिर मैं हूं कौन, आखिर मेरे जीवन है किस लिए, वो ज्ञान बाजू में रख दो और सारा छोड़ दो, क्योंकि ज्ञान तो ऑलरेडी जितना पढ़ा तो अंदर ही है, वो उस ज्ञान से सारे फिर उत्तर निकलेंगे, ये जीवन हमने अपनाया क्यों, ये अपने आप ही चेतना संसार से विरक्त हो जाती है, अपने आप ही उड़ान भरने लगते हैं, ये देह की सुध बुध अपने आप ही भूल जाती है, ये आखिर जीवन है क्या हमारे, यही जीवन है जो हमारे दिख रहा है, श्वेत कपड़े पहन लिए वैज लगा दिए, यही जीवन है, इसके परे भी जीवन है जो बाकी फरिश्ता रूप स्थिति का अनुभव करो, और वो हमारे अंदर ही तो है, हम ही तो हैं, वो तो हमारे संस्कार हैं, लेकिन विस्मृत हो जाते हैं हम, विस्मृति स्मृति, स्मृति विस्मृति, स्मृति विस्मृति, इसी खेल में हमारा सारा टाइम स्पेंड हो जाता है, खर्च हो जाता है, कि शाम को हम देखते तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है, तो हम कोई 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे 2 घंटे के योग्य नहीं है, सवेरे शाम के योग्य नहीं है, 24 आवर 24 घंटे हम निरंतर योगी निरंतर सेवादारी हैं, जो भी हमारे संकल्प में वाइब्रेशन है लंबे समय से जो हमने चिंतन करके रखी बुद्धि में स्टोर किया हुआ है, वो वाइब्रेशन अपने आप ही चारों तरफ प्रभावित होते रहते हैं, सोचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, सूरज तो सोचता थोड़ा नहीं है मुझे को धूप देनी है सबको, तो बाबा कहते तुम भी तो मास्टर ज्ञान सूर्य ना, तुम्हारे वाइब्रेशन 24 आवर पूरे संसार को प्रभावित कर रहे हैं, हर एक आत्मा तक पहुंच रहे हैं, हर एक आत्मा को जो शक्ति हमने भरी है उसी अनुपात में वो मिल रही है, इसलिए देखा सभी ने अनुभव किया होगा, मधुबन में आते हैं दादियों से मिलते थे बड़ों से मिलते हैं, क्यों आकर्षण होता है, क्योंकि हदों से परे निकल चुके हैं वो बेहद की आकाश में रहते हैं, तो बेहद में निकलना भी छोटी मोटी बातों में टाइम वेस्ट करने का वो टाइम नहीं है अभी। ये बाबा तो शुरू से कहते आ रहे हैं, लेकिन अभी तो प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है। जो भी भविष्यवाणी थी वो तो अभी स्पष्ट रूप से हम देख ही रहे हैं और हम सब महसूस भी करते हैं, और महसूस करने के बावजूद भी हम अनेक जो व्यक्तित्व है हमारे कि सामने कुछ और, भीतर कुछ और, बाहर कुछ और, स्वयं को हम धोखा देते रहते हैं, आदत पड़ गई है। तो ये टाइम को, एक एक सेकंड को कैसे हमको सफल करना है, इसका प्लान हमको खुद ही तैयार करना है। बताया ना भट्ठी तो हमकी कल परसों से चालू होगी जब घर पहुंचेंगे। तो हमको ये नहीं सोचना कि हमको सेवा मिली तो हमारा योग खत्म हो जाएगा, नहीं, या हमको कहीं जाना है, हम सफर में हैं तो उनका हमारा योग का समय नहीं है। सारा खेल संकल्पों का है ये। अगर वो हमारी दिनचर्या ठीक है तो शाम और सवेर का योग भी पावरफुल होगा। अगर वो हमारी दिनचर्या नहीं है ठीक तो सवेरे और शाम का योग भी प्रभावित होगा। इसलिए दिनचर्या को व्यवस्थित करना, उसको ठीक करना है। उस दिनचर्या में हमारे पास जो भी बाबा ने खजाने दिए, उन खजानों को हम किस तरह से लगा रहे हैं। समय का खजाना, संकल्प का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, कितने सारे खजाने हैं। हम कैसे उनको खर्च कर रहे हैं, कैसे उनको बांट रहे हैं, या स्वयं उनका टेस्ट ले रहे हैं। वो सारे खजाने हमारे कर्मेंद्र में समाये हैं कि अभी भी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं आत्मा हूं, वो आत्मा है, वो आत्मा है, नेचुरल हो जानी चाहिए। और ऐसा नहीं कि आत्मा दिखाई दे रही है, एक तो अंदर की वृत्ति की बात है। आत्मिक वृत्ति अर्थात किसी को देख के हमारी कर्मेंद्रियां चलाएं मानना हो। अब चेहरा तो सबका दिख रहा है, भाई बैठा है, बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी है, सब दिख रहा है, लेकिन वृत्ति हमारी चंचल ना हो। उसके लिए सूक्ष्म पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इसलिए बताया बेहद में रहना है, बेहद में। यही संकल्प रखना, जैसे बाबा सभी को क्या समझता है, बच्चे समझता है ना, तो अंदर में अपने स्वयं भी अंदर एक संकल्प रख लेना है कि ये सभी बच्चे ही हैं, नहीं तो अंदर की वृत्तियां चेंज नहीं होती हैं शायद। बार बार उछाल मारती हैं, बाहर पुराने संस्कार उछाल मारते हैं और माया तो आएगी आएगी, क्योंकि हमने ही वो संपदा संजो कर रखी हुई है, उसी से अटैचमेंट है। अब लंबे समय से हमारी दोस्ती और तुरंत हम उसको छोड़े, शायद थोड़े छोड़ेगा वो, लेकिन उससे घबराना नहीं है अपने को। ठीक है, अगर वो आ रहे हैं संकल्प तो हमको काम करना अपने पर। अगर कोई एक व्यर्थ संकल्प आ रहा है तो 10 समर्थ संकल्प हमको तैयार करने हैं, नए समर्थ संकल्प जिनमें ऊर्जा हो, शक्ति हो, पावर हो, परमात्मा प्योरिटी का बल भरा हुआ हो, जिन संकल्पों में अग्नि दिखाई दे। मैं आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, बड़े लंबे समय तक प्रयास कर लिया, अब इनके साथ कुछ विशेषण जोड़ना, साथ में उस सुमान को नए तरीके से चिंतन नहीं करना, महसूस करना है और एक्सेप्टेंस करनी है उसकी, उसको अनुभव में लाने के लिए पहले उसको स्वीकार करना है कि वो मैं हूं। हम स्वीकार ही नहीं करते सुमान को, ऊपर ऊपर से सुमान कर लिया, 10 बार लिख लिया, 21 बार लिख लिया, 108 बार लिख लिया, अनुभूति कहां होती है, क्योंकि स्वीकार नहीं किया हमने। सफलता मिलेगी उसकी, लेकिन परमानेंट जो हमारा वो संस्कारों में समाज है वो नहीं होता, क्योंकि स्वीकार नहीं किया हमने। केवल हमने अपने स्वार्थ के लिए वो संकल्पों का, योग का प्रयोग किया, 108 बार लिखा, 101 के लिए, क्योंकि मुसीबत आ गई, विघ्न आ गया। अगर विघ्न किसको नहीं है संसार में, अगर हम अपने विघ्नों को हटाने के लिए पुरुषार्थ करते, संसार के विघ्नों को कौन हटाएगा। संसार भी तो अपना परिवार ही है ना, वो भी तो आत्मे तड़फ रही है ना, उनके दुख दर्द को कौन दूर करेगा। आज संसार में देखो कितना दुख दर्द है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, देशों में आपसी लड़ाई हो रही है, घर घर में कला क्लेश है, परिवार की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, अपने आप से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जो मैं हूं उसको छोड़कर अनेक प्रकार के व्यक्तित्व हम अपने आगे खड़े कर देते हैं। इसलिए स्वयं की खोज करनी है। वो ये बताएं कि मैं हूं कौन। जो भगवान ने कहा उसको सहज स्वीकार वो होता नहीं है, एकांत में बैठ के चिंतन करने की आवश्यकता है, अकेले बैठ के मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। हम कई बार देखते हैं, हम यहां मेडिटेशन करते हैं, सभी बैठे होते हैं, सबकी एक दो के ऊपर दृष्टि पड़ती है तो लगता है हम सभी योग में बैठे हुए हैं। कभी कभी लगता है ये योग भी दिखावे जैसा हो जाता है। कई बार हम जाते हैं वाकई में कोई साधु जंगल में बैठे होते हैं एकांत में, कोई देखने वाला नहीं उनको, वो है असली साधना। भले उनको भगवान का ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी वो साधन में बैठे हुए हैं। भगवान उनकी महिमा करता है कि उनकी पवित्रता के बल पर ये भी भारत थमा हुआ है। असली साधना तो वो है जब हम कमरे में अकेले होते हैं। संगठन में तो हम साधना कर ही रहे हैं लेकिन जैसे हम यहां से जाएंगे साधना तो हमारी तब चालू होती है कि हमारे संकल्प कहां कहां बिखर रहे हैं, जो हमने एनर्जी इकट्ठी की है उसको कहां कहां उपार्जित कर रहे हैं। असली साधना हमारी कर्म क्षेत्र पर होती है और कर्म क्षेत्र पर हमने नियम पूर्वक मर्यादा प्रमाण, और हम कर्म क्षेत्र पर वो स्मृति रहती है निमित्त भाव की, तो फिर अमृत वेला और नुमा शाम का योग भी अच्छा होगा। नहीं तो संकल्प खींचेंगे, मन को भारी करेंगे, नींद आएगी क्योंकि चिंतन किया नहीं दिन में। इसलिए मन को काम देना है, काम ही नहीं देंगे तो क्या होगा, मन तो वैसे ठंडा हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो भी बाबा ने अमूल्य सौगात दिए, खजाने दिए, गिफ्ट दिए, इसका सदुपयोग करना है। उसने हमको इतने उतने खजाने दिए हैं और उन खजानों का हम महत्व ना रखते हुए उनको हम ऐसे फेंक दें कैसा लगेगा उसको। अव्यक्तवाणियां तो खरीदी हुई होंगी सब, नहीं उनको हम कितना पढ़ते हैं, कितना उस अव्यक्तवाणी से प्यार है, कितना उससे हम अलग अलग ज्ञान रत्न निकालकर स्वयं उसका स्वाद लेते हैं, टेस्ट रखते हैं। तो स्वयं के ऊपर ही हमको बहुत कड़ी दृष्टि रखने की आवश्यकता है, नहीं तो बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार वो संकल्प खींचते रहेंगे खींचते रहेंगे। और जब गहराई से एक बार ज्ञान का टेस्ट बैठ गया तो संसार से वैराग्य रखने की जरूरत नहीं, अपने आप वैराग्य धधकता रहेगा, कहीं भी आंख डूबेगी नहीं, कभी भी अधीनता के संस्कार नहीं होंगे। नहीं तो अधीनता के संस्कार, मांगने के संस्कार, फीलिंग के संस्कार, छोटी छोटी बातों में दुखी होने के संस्कार, इन सब चीजों से परे निकलने का टाइम है अभी। अगर इन छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो विश्व का कल्याण कैसे करेंगे। स्वयं का हम कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए संकल्प कैसे हमारे उत्पन्न होंगे। तो स्वयं के ऊपर ही कड़ी दृष्टि रखनी है, नहीं तो जीवेशनाएं जो इच्छाएं हैं अंदर में वो इच्छाएं हमको दबा के रखती हैं। फिर वो मान शान की इच्छा है, खाने पीने की, घूमने फिरने की, समय अनुसार वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा सूखा रूखा जीवन है, वो भी ठीक है। लेकिन ज्यादा अगर उनके ऊपर हमारा संकल्प चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर हम आत्मा बलशाली नहीं बन पाएंगे। इसलिए स्वयं के अंदर देखना है कि जो भी कमी कमजोरी उनको स्वाहा करना है, संकल्प लेना उनके लिए। जैसे सवेरे मेडिटेशन करेंगे तो एक संकल्प ये करना है कि जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं, जितने भी नेगेटिव संकल्प हैं, जितने भी विकारी संकल्प हैं, सबका आह्वान कर लेने का। बाबा तो कहते मेरा आह्वान करो, है ना, लेकिन इन सबका आह्वान करो, डरना नहीं उनसे, उनको विदाई देनी है। देखना वो सारे आ रहे हैं और सारे भस्म हो रहे हैं वो, नहीं तो अगर एक संकल्प उसको उठाने में लगेंगे सारा हमारा टाइम उसी में स्पेंड हो जाएगा तो लास्ट में दुखी होकर उठते हैं। इसलिए घबराना नहीं, अगर संकल्प आ रहे हैं बताया पहले से 10-20 संकल्प अंदर में इकट्ठे कर लो। आज का स्लोगन था, क्या स्लोगन था आज का, शुभ चिंतक मणि। फिर आगे कौन है शुभ चिंतक मणि, जिसके प्रकाश से विश्व को रोशनी मिलती रहे, जिसकी किरणें विश्व को रोशनी देती रहे। तो वो हम शुभ चिंतक मणि है, स्वयं पर रहम किया है। बताया था ना बाबा ने, आज बेरहमी बच्चे अपने ऊपर बेरहमी करते हैं, तो कहां कहां बेरहमी करते हैं। सवेरे उठते पहले संकल्प अगर हमारे पास नहीं है, बिना संकल्पों के अगर हम मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं तो भी पावरफुल नहीं होगा। चिंतन चलाना है हमारा जो योग है, वो खाली बैठ के बाबा को देखने का योग नहीं है। मन पर मन में चिंतन करना है। इसलिए बाबा कहते हैं रात को रोज सोकर सोते हुए सोने से पहले मुझे अपने सारा पोता मेल दे दो, और अमृत वेले के लिए पहले से संकल्प कर लो मैं कौन सी आत्मा हूं, अभी अभी अवतारित हुई हूं, परम दान से पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को लेकर मैं आत्मा अवतारित हुई, सारी पवित्रता मुझ में समाई हुई है। नए संकल्पों के साथ उन्होंने, और उन संकल्पों के वाइब्रेशन, उनकी रोशनी पूरे संसार को प्रकाशित कर रही है। जो भी मेरे आसपास बैठे हैं उन सब की जो विकारी वृत्तियां वो भस्म हो रही हैं, तभी तो शुभ चिंतक मणि कहलाएंगे। तो पहले से संकल्प हमारे पास होने चाहिए। चिंतन के अभाव में हमारा योग भी शक्तिशाली नहीं होता है, फिर बाद में हाथ में कुछ नहीं आएगा। जीवन ही हमारा भट्ठी बन जाए, भट्ठी एक दो दिन की थोड़ी नहीं है, परमानेंट ही। ये तो ठीक है हमको एक मौका मिलता है भगवान की गोद में आके बैठकर साधना करने का, बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है, नसीब होता है, लेकिन जहां हम रहते हैं वो भी भगवान की ही भूमि है। ये भूमि हमारी है कहां संसार की, हम तो मुसाफिर हैं, मेहमान हैं, चार दिन के आज हैं कल नहीं होंगे। यज्ञ के आदि रतन सब अव्यक्त हो गए, हम सबको भी तो चले जाना है। तो क्यों हमने पकड़ के रखा हुआ संसार को, क्यों हमारी इतनी आसक्ति है, क्यों हमारा उससे इतना लगाव है, अटैचमेंट है, मोह है, अनासक्त वृत्ति, होते हुए भी डिटैच, जैसे अपना कुछ है ही नहीं। और बताया ना कि वास्तव में क्या है, कुछ भी तो अपना नहीं है, देवी अपना नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या पता दो मिनट के बाद रहेंगे नहीं रहेंगे, पता भी हम सबको, लेकिन प्रैक्टिस कम है। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लंबे समय की प्रैक्टिस चाहिए चिंतन करते हुए। इसलिए बाबा हमको ड्रिल क्यों सिखाते हैं कि इस देह की दुनिया की शुद्ध बुद्ध से परे चले जाएं, अपने निराकारी स्वरूप को, अपने फरिश्ता स्वरूप को, और वहां भी चिंतन करना है ऊपर बैठ के। और परमधाम नहीं पहुंचते तो कोई बात नहीं, नहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, यही परमधाम समझो। बताना कि सब संकल्प का खेल है, बस मैं आत्मा परमधाम में बैठी हूं, जो संकल्प किया ना वो सामने दृश्य परमधाम का ही मर्ज हो जाएगा। यही ये ब्रिफ्टी मेरा परमधाम है, या मेडिटेशन में बैठी हूं यही परमधाम है। जहां हम कर्म क्षेत्र में रहते हैं वो कर्म क्षेत्र ही साधना का स्थल है, वो कर्म क्षेत्र ही अलौकिक अनुभूतियों का स्थल है, वो कर्म क्षेत्र ही दुआएं जमा करने का स्थल है। तो अपने चिंतन को थोड़ा दिशा देनी पड़ेगी, क्योंकि हमको कर्म क्षेत्र में रहना है, सारे सामाजिक सरोकार भी निभाने हैं, दायित्व निभाने हैं, परिवार की जिम्मेवारियां हैं, समाज की जिम्मेवारियां हैं, लौकिक अलौकिक सब बैलेंस रखते हुए। तो निरंतर हम योगी बने, एक दो घंटे के योगी नहीं है, दस मिनट के योगी नहीं है, निरंतर योगी। लेकिन प्रैक्टिस तो चाहिए उसके लिए पहले से। इसलिए बाबा जी हमको ज्ञान देते हैं परिवर्तन करना है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने का ज्ञान। और इसकी मुरली है एक लास्ट 70 वाली, 31 बार 70, सवेरे से लेकर शाम तक हमारी दिनचर्या कैसी हो, देखना तो कैसे देखना है, बोलना तो कैसे बोलना है। आज भी था ना संकल्प बोल कर्म कैसे हो हमारे, अच्छे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, रॉयल और आई के वरदान में था ना, रूहानी प्रभावशाली बाप समान। तो वो बोल में रूहानियत है, वो दृष्टि में अलौकिकता है, उसमें रूहानियत है, वो कर्मों में अलौकिकता है, या वो साधारणता ही है। साधारणता का समय भी बीत गया। हर चीज में अलौकिकता, रूहानियत। बाबा कहते अगर साधारणता में आते तो उसमें रूहानियत समाई हुई हो। तो एक एक ज्ञान रत्न हम सबके लिए कितना अमूल्य है, हम उसको कितना महत्व देते हैं, कितना उसको अपने जीवन में उसका उसको आत्मसात कर रहे हैं, कितना सदुपयोग कर पा रहे हैं। इसलिए स्वयं को ही देखना है, दूसरों को देखने का टाइम चला गया, पर चिंतन पर दर्शन बहुत पीछे की बातें रहेगी। नहीं तो यहां आने के बाद ही हमने देखा कोई कोई महसूस तो हो ही जाता है, अब वर्णन नहीं करना चाहिए। यहां आके किसी को देखना नहीं है, साधना के लिए आए तो साधना ही करनी है। हमारा सब्जेक्ट साधना का है, अगर मैं अपने सब्जेक्ट पर ही ध्यान ही नहीं दे रहा हूं तो पास विद डाउनर कैसे होंगे, फिर फायदा क्या इधर आने का। जिस स्थान पर जिस कर्म के लिए जाते हैं, जो हमको सेवा मिली है, जो जिम्मेवारी ली है, केवल उसी स्थान पर हमारा लक्ष्य फोकस होना चाहिए। लक्ष्य स्पष्ट है तो चुनौतियां नतमस्तक हो जाएंगी अपने आप। लक्ष्य नहीं क्लियर है तो हम खुद ही अपने लिए विघ्नों का निर्माण करते रहते हैं, अपने लिए खुद ही समस्याएं को पहाड़ खड़ा करते रहते हैं। फिर हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढते रहते हैं, उससे पूछें, उससे पूछें, उससे पूछें, सब प्रश्नों का उत्तर इधर ही है। जब भगवान की वाणी को पढ़ने के बाद ही हमको प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमारे से कहां मिलेगा वो। सब प्रश्नों का उत्तर बाबा की वाणियों में है, इसलिए किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, वाणियों में डूब जाओ। लेकिन उसके बावजूद फिर वही प्रश्न घूम फिर के वही आता है। इतनी गहरी गहरी वाणियां हैं, एक वाणी भी अगर उसमें अच्छे तरीके से उसको पकड़ के उसमें अपने आप को डुबा दें, सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक वाणी संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। प्राप्तियां हमको कितनी मिली, अथाह प्राप्तियां। स्वयं ही लिस्ट तैयार करनी है, बड़ा बड़ा माल नहीं ढूंढना है, खुद मुरलियों से ढूंढो। खून पसीने की खुद की कमाई होती है, उसी का ही स्वाद आता है, खुद के चिंतन पर। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी गोट तो नशा चढ़े, लेकिन हम दूसरों को घोटते रहते हैं, दूसरों की बातों को घोटते रहते हैं। तो इतना हमको ऊंचा ज्ञान मिला, उसका चिंतन करना है। कब तक हम दूसरों के सहारे चलते रहेंगे, और लास्ट में जाना तो अपने सबको ही हमको अकेले जाना है। बाबा तो साथ में जाएगा जाएगा, और बाबा भी कैसे लेके जाएगा, परसों का स्लोगन था, अगर हम हल्के होंगे तो पलकों पर बिठा के ले जाएगा, और भारी होंगे तो कैसे ले जाएगा, ले तो तब भी जाएगा वो। तो बोला डंडे मार पीट के मैं तुमको ले जाऊंगा, लेकिन बाबा मारेगा नहीं, हमारे कर्म ही हमको इतना व्यथित कर देंगे जो एक सेकंड भी कई वर्षों के समान अनुभव होगा। वो तो रहम का सागर है, प्यार का सागर है, वो कैसे मारेगा, उसके अंदर क्रोध के संस्कार ही नहीं है तो मारेगा कैसे वो। वो तो प्यार का सागर है, इसलिए हम उतने हल्के हो जाएं। किसी के भी जीवन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल बाबा कहते फॉलो फादर, उसी में सब बातें आ जाएंगी। शाम को पिक्चर देखी ना सबने, भाग्य विधाता, रोया भी होगा कोई कोई, कौन कौन रोया उसमें, देखो कैसे हंसू है, क्यों, क्योंकि हमारा कुल है, वो हमारा परिवार है। आज तो समस्याएं ही नहीं है वो जो पहले समस्याएं होती थी। जो त्याग तपस्या वो हम त्याग तपस्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम तो बने बनाए, पर इतना क्लियर है हर एक बात, सूक्ष्म रूप से भी उसकी क्लैरिफिकेशन मिल रही है, और उसमें तो था भी नहीं। वो छोटे छोटे बच्चे धूप में खड़े हो गए, वंडरफुल है। इसलिए सभी को ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी दोनों किताबें बार बार पढ़नी है। अगर योग में प्रॉब्लम आ रही है ना तो वो किताबें खरीदो और दोनों पढ़ो। खाली योग के बारे में, योग के लिए प्यार चाहिए। जिसने योग की भूमिका तैयार की, जिसने योग लगाना हमको सिखाया, उसकी जीवन कहानी का नहीं अगर उनको पता तो ये लगेगा कैसे। उसके जीवन चरित्र को अगर स्वयं में आत्मसात करना तो उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से, उस कालखंड में हमारी मनोवृत्ति पहुंच जाएगी। इसलिए बाबा की जीवन कहानियां दोनों किताबें वो पढ़नी है, बड़ों की क्लासेस, जगदीश भाई की क्लासेस, ज्ञान सुधा की 4 या 5 किताबें हैं। वो वास्तव में सुधा एकदम सुधा सुधा राशि है। वो तो दादियों की क्लासेस हैं, एक एक शब्द दादियों के मुख से जो भी शब्द उच्चारित तो वो अनुभूति होती है, क्योंकि लंबे समय तो को अभ्यास किया हुआ है, 14 साल का जो अभ्यास, तो हमको तो इतने साल हो ही गए ना, 14 साल निकल गए होंगे, हमने कौन सा अभ्यास किया, हमने केवल इतना ही वर्णन करते रहते हैं भाई वो 14 साल का अभ्यास किया, हम क्या कर रहे हैं। केवल दूसरे के वर्णन करने से हमारा जीवन नहीं बदलेगा। अगर ठीक है बाबा की जीवन कहानी को हम वर्णन करते रहेंगे, मम्मा ने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, हम क्या कर रहे हैं। उनके जीवन चरित्र हमारे जीवन में कितने वो उतरे हैं। इसलिए यज्ञ इतिहास को बार बार उसमें झांकना है, उसमें कूदना है अच्छी तरह से। तो बाबा की जीवन कहानियां पढ़नी है अच्छी तरह से, वो बार बार पढ़नी है। योग नहीं लगता है वो पढ़ो अच्छी तरह से। योग लगाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, योग तो हमारा कहीं ना कहीं लगा ही रहता है, केवल दिशा चेंज करनी है। और लगता कहां योग, जहां हमारा प्यार होता है, और प्यार कहां होता है, जहां हमें प्राप्तियां होती है कुछ। और प्राप्ति किससे होती है, जो भरपूर होता है। तो भरपूर कैसे हुआ वो, तो वो सागर है, हम भी तो उसी के बच्चे हैं ना। तो वास्तव में अपने आप में हम संपन्न हैं, संपूर्ण हैं, वो सारे संस्कार हमारे में हैं। जैसे हाथी के बच्चे के संस्कार कुत्ते जैसे होंगे, हाथी जैसे होंगे ना, शेर के बच्चे संस्कार गिद्ध जैसे होंगे, तो हम भगवान के बच्चे इतना तो है कि नहीं है, तो संस्कार कैसे होने चाहिए। सिंपल है, तो है ही है ना वो तो संस्कार, उसके बच्चे तो उसके संस्कार हैं हमारे में। इसलिए उन संस्कारों को बाबा क्या कहते हैं, बार बार उनका अभ्यास करो। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप के कौन से संस्कार हैं, आदि स्वरूप के कौन से संस्कार हैं, आदि स्वरूप के कौन से संस्कार हैं, सोलह से बढ़ना नहीं है, जितना बाबा ने बताया ना वहीं तक रहना है, उसके आगे हम क्यों बढ़े। शक्तियां कितनी है, 8, क्यों बढ़ना आगे फिर। यही तो समस्या है। हाँ तो सर्वशक्तियां कौन कौन सी है, माना हम कह हमको श्रीमत पर चलना, अर्थात अष्ट शक्ति हमको अष्ट याद करनी, आगे नहीं करनी है, यह श्रीमत नहीं है, विस्तार करना उसका। वो तो बाबा केवल एग्जाम्पल बताया है, शक्तियां तो था हैं, और गुण कितने हैं, 32 गुण याद करने, किसको याद किया, किसी ने याद, जब बताया तब याद किया था। तो उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, वो 32 के 32 गुण याद करने हैं, 32 शिव बाबा के कैलेंडर वाले गुण है ना, और 36 गुण दूसरे हैं दिव्य गुण। आप 5-7 बातें परमानेंट याद कर लो ना, बुद्धि फ्रेश रहेगी हमेशा। योग नहीं लगे ना उनको दुराओ, 18 बातें शांति समय वो याद करो। हिस्ट्री हाल के बाद बाहर दादियों की 21 तस्वीरें लगी हुई हैं, सबसे पहले मम्मा की है, दादी जानकी की है, गुलजार दादी की है, बड़े दादी की है, मोनी मनमोहनी दीदी की है, निर्मल शांता दादी, ब्रजेंद्रा दादी, चंद्रमणि दादी, रत्नमोनी दादी है, फिर शांतामणि दादी है, मनोर दादी है, फिर उसके हृदय पुष्पा दादी है, गंगे दादी है, ऑलराउंडर दादी है, ईशु दादी है, फिर पुष्प शांता दादी है, संतरी दादी है, ऐसे लगी हुई है सारा वो। ये 17 हुई है अभी, 4 बाकी है। संतरी दादी के बाद शीलेंद्रा दादी है, फिर ध्यानी दादी है, फिर संदेशी दादी, लास्ट में कुंज दादी है। तो उनका जीवन चरित्र हमारे अंदर में आएगा। सवेरे एक बार दृष्टि लो उन सबसे, जैसे दादी हैं सब, सभी नहीं है इसमें, इनके जीवन चरित्र को पढ़ो, मन बुद्धि की एकाग्रता बढ़ेगी। ऐसे बाबा के 32 के 32 गुण ऐज की याद करने। 32 गुण कौन कौन से हैं? गुणों एज इट इज याद करने हैं, आगे पीछे नहीं। भले मेहनत रोज के 5 याद करो, 6 दिन में याद हो जाएंगे सारे, सीधी सी बात है। पहली वाले बच्चे कैसे याद कर लेते हैं? तो ऐसे याद करने, फिर चिंतन हमारा अपने आप एक एक गुण के आगे विस्तार हो जाएगा। गुणों का सागर है, दिव्य दृष्टिदाता है, दिव्य बुद्धिवाद में पहले दृष्टि है, फिर ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करने वाले हैं, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, ऐसे 32 गुण हैं, तो वो भी याद करने हैं। क्योंकि हमारे पास कोई परमानेंट चाहिए, नहीं तो कुछ भी हाथ में आता नहीं है। पूछेंगे क्या है मुरली में, वो भी याद नहीं आएगा। बाबा के गुण कौन से हैं, केवल दीवार तक ही चिपके हुए हैं, कैलेंडर बस, हॉल की शोभा अच्छी है, हमारे अंदर कहां समाया? वो दीवारें थोड़ी पावन बनेंगी, पावन तो हमको बनना है। तो ज्ञान तो उस विस्तार से है, लेकिन ज्ञान को की गंभीरता को समझते हुए उसको रमणीकता से जीवन में आत्मसात करने का पुरुषार्थ करना है। कर्म क्षेत्र पर सहज योगी जीवन का निरंतर हमारा सतत अभ्यास चलता रहे, इसके लिए खुद ही अटेंशन रखने की आवश्यकता है। ओम शांति।